पांच समिति, पांच इंद्री रोध हो गए। अब छह आवश्यक कौन कौन से हैं? अवश्य करने योग्य रोध जो क्रियाएं हैं वे आवश्यक कहलाती हैं। दूसरी आवश्यक की परिभाषा ये भी है कि इंद्रियों के वशीभूत न होने वाले साधु के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वे सब आवश्यक कहलाती हैं, क्योंकि अवश्य होकर की गई हैं। इंद्रिय और मन के वश में नहीं है इसलिए अवश्य हैं, और अवश्य अर्थात साधु के द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं आवश्यक कहलाएंगी। वो छह क्रियाएं हैं और सात शेष गुण हैं, उनको भी क्रम से कहते हैं। समता संहारें, स्तुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को। जिनके न नौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली रैन्य में, कछु शयन एकाशन कर। यहाँ पर आवश्यकों को लेकर के दौलत राम जी और जो आचार्य परंपरा है उसमें थोड़ा सा फर्क है। दौलत राम जी ने जो है एक आवश्यक स्वाध्याय के रूप में रखा है, जबकि आचार्यों ने स्वाध्याय को आवश्यक न रख करके उसकी जगह पर प्रत्याख्यान को आवश्यक रखा है, जो इसमें नहीं है। समता अर्थात सामायिक, समता समारे अर्थात एक निश्चित समय पर तीनों संध्या कालों में और राग देश से रहित होकर के आत्मा में लीन होते हैं, वो जो सामायिक है। सामायिक का अर्थ समता भाव है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तीन संध्याओं में समता भाव धारण करना ये सामायिक है। और स्तुति उचारें अर्थात स्तुति करना, 24 तीर्थंकरों के गुणगान करने का नाम स्तुति या स्तवन कहलाता है, और किसी एक तीर्थंकर के गुणगान करना और उनकी उनको प्रणाम इत्यादि करना ये सब वंदना कहलाती है। 24 तीर्थंकरों के गुणगान करना वो कहलाएगी स्तुति या स्तवन नाम का आवश्यक, और वंदना किसी एक तीर्थंकर की। यही फर्क है कि एक तीर्थंकर की जो स्तुति की जाएगी वो तो वंदना कहलाएगी, और 24 तीर्थंकर की जाएगी वो स्तवन कहलाएगा या स्तुति कहलाएगा। स्तुति और वंदना ये दो अलग अलग आवश्यक है। और फिर उसके बाद हम इसमें जोड़ लेते हैं स्वाध्याय की नित करें, श्रुति रति की जगह पर नित करें प्रत्याख्यान, अर्थात भावी आगामी जो त्याग किया है उसका संकल्प करना वो प्रत्याख्यान कहलाता है। और प्रतिक्रमण अर्थात किए गए दोषों का निराकरण करने की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है। उत्तजें तन अहमेव को, शरीर में आत्मपने या ममत्व भाव का त्याग कर देने का नाम कायोत्सर्ग है, वो भी उनका एक आवश्यक है। इस तरह सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना और कायोत्सर्ग ये क्षय आवश्यक
मानी जाती। बैठ के भी कर सकते हैं और
खड़े होकर, कायोत्सर्ग जो है दोनों प्रकार से। जिनके न न्योन न दंत धोवन, जो स्नान भी नहीं करते हैं इसलिए आयस्नान नाम का उनके व्रत है, और दांतों को नहीं धोते हैं अर्थात दांतों को किसी विशेष प्रकार के मंजन इत्यादि के द्वारा चमकदार नहीं बनाते हैं, अहिंसा का दृष्टिकोण वहां प्रमुख है, इसलिए उनके अदंत धावन नाम का एक व्रत है। आयस्नान हो गया, अदंत धावन, लेश अंबर आवरण, और उनके लेश मात्र भी वस्त्र इत्यादि के द्वारा वे अपने शरीर को नहीं ढकते हैं, इस तरह से ये अचेलक नाम का गुण है, है? और भूमाही पिछली रैन में कछु सैन एकासन करें, ये दौलत राम जी ने अपने मन से लाइन लिखी है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि भूमि पर शयन करेंगे, और भूमि भी जो है चार प्रकार की मानी गई है, एक कंकर पत्थर से युक्त सामान्य जो जमीन है उस पर सो जाना, या कि कास्ट फलक पर सोना, या कि तृण इत्यादि अर्थात घास के या चटाई इत्यादि को ग्रहण करके इस पर सोना, या शिला तल पर सोना, ये जो है चार प्रकार के भूमि हैं। और एक पार्श्व से तो सोते ही हैं, करवट बदलेंगे अगर आवश्यक होने पर तो जीव राशि का घात ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रमार्जन करके करेंगे, लेकिन अल्प निद्रा ही लेते हैं। पिछली रैन का अर्थ यहाँ पर पश्चिम रात्रि है, अर्थात मुख तो 12 से 3 बजे तक का समय है, तो वो 11 से 4 तक का समय ले लिया लगभग, उसमें ही वो विश्राम करते हैं। पिछली रात का अर्थ ये सुबह सुबह नहीं ले लेना कि पिछली पश्चिम रात मतलब सुबह नहीं, पिछली रात मतलब वो 11 से 4 तक का बीच का 12 से 1 प्रहर,
रोज प्रतिदिन 4 बजे उठ जाते हैं।
हाँ, 4 के पहले उठ जाते हैं।
अच्छा,
3:30-4 बजे से काम शुरू कर हो जाती है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो
जैसे मैं तो अगर 6 घंटे नहीं सो तो मुझे थोड़ा सा
6 घंटे तो सो जाते हैं, 5 या 6 घंटे मुझे महाराज जी, क्योंकि ज्यादा लिफ्ट वर्क नहीं करते जब विहार विहार करते हैं तो थोड़ा सा
एक ही बार खाते हैं,
इसलिए जो है ज्यादा निद्रा का नहीं, 6 घंटे बहुत होती, पर्याप्त होती निद्रा 6 घंटे। इस तरह उनके कितने गुण हो गए बाह्य में, जो शेष 7 गुण है उसमें से आयुष्नान हो गया, अदंत धावन हो गया, और अचेलक हो गया, और भूसयन हो गया। अब बचे एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कश लौंच करत न टरत परिश्रह सो लगे निज ध्यान में, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करण अर्घाव तारण असु प्रहारण में सदा समता करण। 3 और शेष गुण उनके बचे हैं, वो ये हैं कि वो दिन में ही एक बार आहार लेते हैं, ठीदी भोजन ए भत्तम च, एक बार भोजन लेना दिन में, और खड़े होकर के लेते हैं अलप अर्थात बिना किसी विकल्प के। यहाँ पर अलप का अर्थ थोड़ा भी है,
अल्प
अल्प मतलब अल्प, खड़े होकर के अल्प मात्रा में, और अपने हाथ में ही अंजुली में निज पान में। वास्तव में इसका अर्थ ये है कि अपने ही आत्मा के ध्यान में रहते हैं, निज पान अर्थात अपने ही आत्मा का आनंद का पान करते रहते हैं।
अच्छा, वो
ध्यान अपने हाथ में भी, अपने निज हाथ में निज पान, पानी पात्र से पान से जो है हाथ भी बन गया, तो अपने हाथ में। इस तरह क्या अर्थ हुआ कि एक बार लेते हैं खड़े होकर के पानी पात्र में आहार लेते हैं, ये 2 मूल गुण हो गए। और कश लॉन्च करत और केश लॉन्च करते हैं, ये केश लॉन्चन एक व्रत है। इस तरह ये तो हो गए उनके 7 शेष गुण, इस तरह 28 हो गए। अब कहते हैं कि परिचय भी सहन करते हैं और अपने आत्मा का ध्यान भी करते हैं, ये मूल गुण में शामिल नहीं है परिचय सहन करने। तरत न परिचय, केश लॉन्च करते हैं और परिचय से विचलित नहीं होते हैं, अपने निज आत्मा के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, समता भाव उनका मुख है। तो अरि और मित्र, शत्रु और मित्र में, महल और स्मशान में, कंचन और कांच में अर्थात सोने और सामान्य कांच में, निंदा और स्तुति में, इन सब में, और या कि कोई अर्घावतारण अर्घ के द्वारा पूजा करे, या कि कोई असी का प्रहार करे अर्थात तलवार भी उनके ऊपर चढ़ाए, तब भी वे समता भाव रखते हैं। ये उनकी अपने उत्तर गुण कहलाते हैं, परिचय सहन करना, आत्म ध्यान करना और समता भाव रखना, ये सब एडिशनल है, उसमें ऑप्शनल है, या कहना चाहिए उनके अपने स्वभावगत ही ये हो जाते हैं 28 मूल गुण के अलावा। इस तरह 28 मूल गुण का वर्णन हो गया। अब और परिचय और क्या चीजें वो साथ में शामिल उनके और हैं, तो कहते तप तपे द्वादश धरे ब्रशदश रतन त्रय सेवें तर सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भाव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होत प्रगटे अपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति। इसके अलावा जो हमने कहा कि परिचय विजय भी करते हैं, समता भाव भी रखते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, कहते तप भी तपते 12 प्रकार के तप, अनसन अवमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेश, ये बाह्य तप हैं। इनको बाह्य तप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाह्य वस्तुओं के आलिम्बन त्याग और ग्रहण पर निर्भर करते हैं, और बाह्य लोगों के लिए दिखाई भी पड़ते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के अलावा अन्य बाह्य मत वाले भी इनको चूंकि करते हैं, इसलिए इन 3 विशेषताओं के कारण ये बाह्य तप कहलाते हैं। और अंतरंग में प्रायश्चित विनय बह्याव्रत स्वाध्याय ध्यान और विसर्ग, ये अंतरंग तप कहलाते हैं, तो वो अंतरंग तप भी धारण करते हैं। इस तरह से बहिरंग और अंतरंग तप दोनों प्रकार के 6-6 तप 12 तप करते हैं। उधरें ब्रशदश, ब्रश का मतलब है यहाँ पर धर्म, तो 10 प्रकार का जो धर्म है अर्थात उत्तम क्षमा मार्दव इत्यादि, इन 10 धर्मों का पालन करते हैं। रत्नत्रय सेवें सदा, और हमेशा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनको ही पालन करते रहते हैं। और ऐसे मुनि महाराज जो उत्तम सहनन के धारी होते हैं, विशेष प्रकार की योग्यता से युक्त होते हैं, वे एक अकेले भी विहार करते हैं, अन्यथा समूह में ही विहार करते हैं। पंचम काल में एक अकेले विहार करने का निषेध है, समूह में ही विहार करने का एक्सेप्शन में भी पॉसिबल, लेकिन एक अकेले विचरण करने की परमिशन पंचम काल में नहीं है। पंचम काल में तो समूह में ही विचरण करेंगे, 1-2 महाराज कम से कम है वो रहेंगे। चाहे नहीं भाव सुख कदा, पर विशेषता यह है कि संसार के सुखों की अब उनको कोई आकांक्षा नहीं है। वे विचरण भी करते हैं तो किसी संसार के सुख के लिए नहीं करते हैं, वे अपने आत्म सुख की दृष्टि से विचरण करते हैं। इस तरह से ये सकल संयम कहलाता है, 28 मूल गुणों का बाह्य में पालन करना और अंतरंग में भीतराग रखना, ये सकल संयम कहलाता है।
महाराज जी, ऐसा कोई नियम है कि एक जगह पे इतनी दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे?
हाँ, उसमें है कि चातुर्मास में 4 माह तक रहेंगे, अन्य दिनों में जो है 1 माह 2 माह तक रहेंगे। अच्छा। छोटे शहर में, छोटे गांव में 1 दिन 1 रात रहेंगे, बड़े में 5 दिन रहेंगे। तीर्थ स्थानों पर चाहे जितने समय रह सकते हैं, किसी कारण विशेष से एक स्थान पर बहुत समय तक गुरु की आज्ञा से रह सकते हैं, ये इस तरह के नियम बने हुए हैं। उसमें मुख्य तो ये है कि उस स्थान विशेष से लगाव नहीं होना चाहिए और उसे छोड़ करके ये अपनी सुख सुविधा फैला ली वहां पर और रहने लगे मठ बना करके, तो कहते वो नहीं, अनियत विहार होना चाहिए। इस तरह से ये सकल संयम है। 2 प्रकार का संयम होता है, सकल संयम और एक विकल संयम, विकल चारित्र और सकल चारित्र। विकल चारित्र वो कहलाता है अनुव्रत रूप जो श्रावक का है, और सकल चारित्र 5 महाव्रत रूप जो मुनि महाराज जी का है। ये जिसके ये सकल चारित्र जिसको प्राप्त हो जाता है, महाव्रत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, अब वो अपने राग द्वेष परिणामों को जीत करके जब आत्मस्थ हो जाता है, चर्या नहीं करता बाहर की, तब उसको स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये संयमाचरण चारित्र है। चारित्र 3 प्रकार का है, सम्यक्ताचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक दृष्टि के आचरण में निर्मलता आती है वो सम्यक त्वचरण चारित्र कहलाता। फिर उसके बाद अनुव्रत और महाव्रत रूप जो चारित्र है वो संयमाचरण कहलाता, चारित्र कहलाता। फिर संयमाचरण चारित्र में निष्णात होकर के जब कोई मुनि आत्मस्थ हो जाता है और राग द्वेष परिणामों को जीत लेता है, तब वो स्वरूपाचरण कहलाता है, अपने स्वरूप में जो लीन है। अब बाह्य क्रियाएं उसने बिल्कुल टोटली बंद कर दी है, ध्यानस्थ हो गया, तब उसके स्वरूपाचरण चारित्र। जिस होत प्रगटे अपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति। सब समस्त जितनी भी बाह्य प्रवृत्ति है वो सब समाप्त हो गई है, निवृत्ति रूप स्वरूपाचरण चारित्र में लीन हो गए, जिसके द्वारा अपनी आत्मा की निधि अब उनको प्रकट होने वाली है। क्या करते हैं वो आत्मा में लीन होकर के